बैठा रोहित, अरे आ गया आ गया यार, वीआईपी सीट ले लो। बहने भी आ जाओ, कोई नहीं मैं पूछूंगा नहीं कुछ। रोहित भाई आ गया, वो आपकी वीआईपी सीट इधर है। ओम शांति। एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है, खाता जमा कैसे करें, क्योंकि हम सभी जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं। अगर हम बहुत गुह्यता से चिंतन करें तो हमें दिखाई देगा हमारा हर सेकंड, हमारा हर कर्म, हमारा हर कदम, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे गुण और अवगुण, शक्तियां, प्योरिटी, सब हर जन्म के हर दिन का भाग्य निर्माण करते हैं। मान लो किसी में यहां संतुष्ट रहने का संस्कार पड़ गया तो वो संतुष्ट रहेंगे जन्म जन्म, चाहे कम भी प्राप्त होगा लेकिन वो संतुष्ट रहेंगे। किसी में देने का संस्कार पड़ गया तो वो देते रहेंगे। किसी में यज्ञ सेवा के प्रति बहुत प्यार हो गया, उसका बहुत बड़ा रिटर्न हर जन्म में उनको दिखाई देगा। तो बड़ी सूक्ष्म गति है हमारे भाग्य निर्माण की। तो पहले हम थोड़ी सी चर्चा करें। देखो बाबा ने जब ये मुरली चली, आपको याद हो दो साल पहले कि बाबा ने अविनाशी बैंक खोला है, याद है, जो केवल संगम युग पर खुलता है। उसमें एक बहुत सुंदर सार की बात थी, तीन बिंदी लगाओ और खजाने बढ़ाओ। टोटल अगर हम ध्यान दें तो हमारे भाग्य का निर्माण हमारी संकल्प शक्ति के आधार पर होता है। किसने अपने मन को कितना शांत करना सीख लिया संगम युग पर, हमें याद रखना चाहिए यही एक ज्ञानी आत्मा की, बुद्धिमान समझदार मनुष्य की पहचान है कि वो कलयुग के इस भयानक काल में जो दिनों दिन भयानक होता जा रहा है, हमें तो बाबा ने बहुत सुंदर जगह बैठा दिया है ना, माताएं देख रही होंगी, ठंडी हवाएं, दिल्ली में, राजस्थान में कैसी हवाएं मिलती हैं। मैं तो बाहर जाता हूं ना, बाबा को थैंक्स देता हूं कि तुमने हमें एक बहुत बड़ा भाग्य तो ये दिया कि प्राकृतिक सुख, बाहर जाते हैं लाइट कटती है, चार चार घंटे, पांच पांच घंटे, गर्मी में कभी रात को किसी के पास इन्वर्टर चलते हैं, किसी के नहीं चलते, गर्मी में ही रहना पड़ता है, हमें भी रहना पड़ता है। हम देखते हैं बाबा कैसी जगह हमें रख दिया है, ये भी हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। प्रकृति भी हमें साथ दे, हम प्रकृति के लिए अपने मन में सम्मान पैदा करें। बहुत सूक्ष्म धारणा है, मुझे एक दो मास से ये बात गहराई से ख्याल में आई, जानते तो थे पर बहुत गुड फीलिंग्स में आई कि प्रकृति को हमें सम्मान देना है। उसने हमें श्वास लेने के लिए हवा दी है, जीवन जीने के लिए पानी, अन्न, शरीर, सब कुछ दिया है ना। अगर प्रकृति ना हो तो हम कहां हों। तो उसका शुक्रिया करने से प्रकृति जन्म जन्म हमें सुख प्रदान करती रहेगी। मुझे एक अनुभव याद आ गया, इसलिए मेरी गति रुक रही है। अभी अभी दिल्ली में ऐसे तो योग के प्रयोग, स्वमान के प्रयोग हम करते ही रहते हैं, पर दो अनुभव दिल्ली के बहुत सुंदर थे। अभी शालीमार बाग में भट्टी के साथ एक पब्लिक प्रोग्राम भी रखा था श्याम को। उस पब्लिक प्रोग्राम में वहां के बहुत अच्छे अच्छे 200 से ज्यादा वीआईपी थे, 30 तो डॉक्टर्स ही थे। उस एरिया के जितने डॉक्टर थे सब आ गए थे, और क्योंकि ज्ञान में आने वाले कई जैनी परिवार हैं, इसलिए मारवाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जैनियों के अच्छे अच्छे लोग, माताएं सब आई थी। वो बाद में भोजन भी रखते हैं, दिल्ली में ऐसी प्रथा रखी हुई है कि वो रात बाद में भोजन देते हैं, बहुत अच्छा। तो उस बहन ने मुझे फोन किया, मैं तो वहां से निकल के दूसरे सेंटर में आ गया था, कि भाई कल का एक बहुत सुंदर अनुभव लोगों का ये है कि जब सब खाने पर पहुंचे तो सब चुप थे, का बात ही नहीं कर रहे थे। खाने पे हम लोग भी जाते हैं प्रोग्राम के बाद, तो रिमझिम रहती है, नेचुरल है, बात भी करते हैं, तो ये भी चर्चा करते हैं भाई क्लास में, चर्चाओं में क्या क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ। तो उसने कहा कि मैंने एक दोस्त से पूछा कि सभी चुप क्यों हैं, उन्होंने कहा कि बोलने को मन ही नहीं कर रहा है। प्रोग्राम की बहुत सुंदर सफलता थी ये, क्योंकि हमने कमेंट्री से योग करा के ही एंड किया था, उसके बाद हम कुछ नहीं करते, बस वहीं एंड, और वहीं से सब जा सकते हैं। मैं ही बोल देता हूँ प्रोग्राम पूरा हुआ अब जा सकते हो, तो लोग जाते नहीं, उठते नहीं। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि लोग उठ नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। एक बहुत सुंदर अनुभव दूसरा ये था, ये तो एक सेवा का था, बाबा की शक्तियां और स्वमान के पवित्रता के प्रयोग कितने सुंदर रहते हैं। दो प्रयोग अभी अभी तो दिल्ली में है, एक जगह भट्टी थी, एक माता आई मेरे पास, कहा मेरी लड़की का पति 7 दिन से सोया नहीं है, आईसीयू में भर्ती किया है, बहुत खराब हाल है, सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन देके, नशे के इंजेक्शन देके फेल हो गए हैं। अब उसकी आंखें फट रही हैं, सिर तो फटा जा रहा है दर्द से, हाल एकदम खराब हो गया, देखा नहीं जाता, क्या करें। मैंने बाबा से जस्ट याद किया बाबा को, और क्या इसको बताऊं, वो तो वहां है नहीं पेशेंट जो मैं कुछ करूं, वो माता भी कितनी ज्ञान योग में है ये भी मुझे कोई पता नहीं, उसका कोई परिचय नहीं था। मैंने उसको कहा आप आज जाओ हॉस्पिटल में और दो काम करना, एक तो पानी लेकर उसको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और उसे पिला देना और ये कह देना इसको पीते ही तुम सो जाओगे। दूसरा मैंने एक नया प्रयोग कराया, मैंने कहा आप हाथ ऐसे मलना और 7 बार संकल्प करना मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और उसके सिराने बैठकर हाथ यहां रखना, रखे रखना, और उसको कहना सो जाओ, जैसे आदेश दिया जाता है ना, सो जाओ। अगले दिन वो माता आई सवेरे, उसकी दूसरा सेंटर था वो वहां ही जहां दूसरी जगह भट्टी थी, कहा भाई बड़ा गुड न्यूज है, हमारा वो व्यक्ति रात को गहरी नींद सोया, डॉक्टर भी हैरान कि तुमने क्या किया है। तो इतना अच्छा, देखो सोया वो और सुख मुझे मिला, होता है ना ये, कितना एक पुण्य का काम हुआ। उनके परिवारों में अशांति फैल गई थी कि ब्रेन हेमरेज न हो जाए, आंखें फटी जा रही एकदम। दूसरा प्रयोग जयपुर में कुमार इंजीनियरिंग में पढ़ता है, कल ही पेपर हैं, तेज बुखार चल रहा है 3 दिन से, कल ही पेपर हैं। मुझे कहा क्या करें पेपर हैं, गड़बड़ हो जाएगी, 3rd semester है। तो मैंने उसको भी ये विधि बताई, पानी को ऐसे ही चार्ज करके 5 बार पियो दिन में, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और एक विधि बताई, हाथों को ऐसे ही मल के संकल्प करना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, और खुद ही अपने मस्तक पे रख लो और संकल्प करो मेरा बुखार उतर जाए। बस शाम तक ठीक हो गया, अगले दिन एग्जाम भी दिया, इतना अच्छा दिया कि बुखार की जो फीलिंग्स थी, जो उसे कमजोरी आती है, वो भी खत्म। तो ये बहुत अच्छे बाबा की याद के तरीके हैं जिससे हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। हमारा शुभ भावनाओं का बैंक भी चालू है, आप सब उसमें जमा कर रहे होंगे, कर रहे हैं, लिया है सभी ने फॉर्म, सभी, उसमें हमारा योग भी गिनती होगा, हमारे शुभ संकल्प भी गिनती होंगे। देखिए उसमें तो कम लिखा है, बड़ी प्रारंभिक चीज लिख दी है। मान लो हम ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं इष्ट देवी हूँ, सब आत्माओं का कल्याण हो, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। मैं पूर्वज हूँ, सबका पालन करता हूँ, सब आत्माओं को शांति मिले, वाइब्रेशंस जाएंगे। ये बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग हम करते रहें, और कई सोचते हैं कि जब हम विश्व के लिए करेंगे तो हमें क्या फायदा है, हमें क्या अनुभव होगा। ये सबसे बड़ा पुण्य है, बाबा की भी सुनी ना अभी मनसा सेवा, ये सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे पुण्य का रिटर्न हमें मिलता है, इस पुण्य का रिटर्न हजार गुना तुरंत हमारे पास आ जाता है, हमें सुख मिलने लगता है। मैंने कुछ ऐसी आत्माओं से प्रयोग कराया जिनका विघ्न हटता नहीं था, जिनके दुख मिटते नहीं थे। मैंने उन्हें एक छोटी सी राय दी कि केवल एक दिन के लिए मैं पूर्वज हूँ, इस स्मृति में स्थित होकर ग्लोब को, विश्व के गोले को एक मिनट सकास दो 10 बार एक दिन में। शाम तक ही फोन आ गया कि दुख समाप्त हो गया है, क्योंकि इससे हमारे पुण्य बहुत जमा हो जाते हैं। इसलिए जहां भी आप जाएं, जिससे भी मिलें, उनको ये होमवर्क याद दिलाना है। याद है ना होमवर्क, बाबा ने काम दिया हुआ है, सब पूर्वज बनकर सबको, सब धर्मों की आत्माओं को सकास देनी है। बहुत अच्छे अच्छे उसमें महावाक्य है, मुरली में लास्ट मुरली है पिछले सीजन की, संसार की सभी धर्मों की आत्माएं अब तुम पूर्वजों की ओर आकर्षित हैं। बहुत सुख संवाद बाबा ने कहे, वर्तमान की बात कही हमें, आकर्षण हो रहा है तुम्हारा उनके अंदर, तुम उन्हें अपनेपन की फीलिंग से देखो तो वो भी समझेंगे ये हमारे हैं। सकास देने की सेवा करते रहो, तुम्हारा जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। जैसे बाबा ने तुम्हारी शक्तियों से पालना की, तुम भी सब धर्मों की आत्माओं की शक्तियों से पालना करो। ये बहुत सुंदर बात आखिरी मुरली में है। तो हम सभी अविनाशी बैंक में जमा करेंगे, खजाने हमारे बढ़ते हैं। तीन बिंदी तो सब जानते हैं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। ये बिंदी ऐसी तो नहीं जो पेन से लगा दी जाए, ऐसी बिंदी तो नहीं है ना, ये बिंदी है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, बिंदु बन जाना, जिससे हमारे संकल्पों को बिंदु लग जाए, चित शांत हो जाए, इससे खजाने जमा होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खजाना संकल्पों का ही है। यूं तो बाबा खुशी का खजाना, समय का खजाना सबको ही बड़ा कहते हैं, और सभी बड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा भाग्य यज्ञ सेवा से, पुण्य कर्मों से बनता है। दूसरी बिंदी बाबा, यानी बाबा के बिंदु स्वरूप पर हम स्थिर हो जाएं, तो हमारा सर्वाधिक भाग्य बनता है। कभी बहुत पहले की एक मुरली है, रिवाइज होके आई है 2 साल पहले, हर सेकंड यदि देह भान का त्याग करो तो हर सेकंड भाग्य बनता रहेगा। तो ये आत्मा बिंदी का, जिसके द्वारा भाग्य बनता है, बहुत अच्छा स्वरूप है। जितनी जितनी हमें फीलिंग होगी मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, उतना उतना हमारी संकल्पों की शक्ति जमा होगी। हम जिसे शक्ति कहते हैं ना, जिसे 16 कला कहते हैं, सतयुग में जो हमारी 16 कलाएं होंगी, सबकी होंगी ना, छोटों की भी होंगी, बड़ों की भी होंगी, वो 16 कलाएं हमारी संपूर्ण शक्ति है। हम अपने अंदर संपूर्ण शक्तियां भरते हैं चित्त जब शांत हो जाता है, पहली बात। बाबा पर जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, दूसरी बात। उसकी शक्तियां हम में बढ़ने लगती हैं। याद होगा आपको, बाबा ने पिछली मुरलियों में स्वमान को भी बहुत बड़ा खजाना कहा है। स्वमान के अभ्यास से हमारे स्वरूप बनते रहते हैं। जैसे अगर हम इस स्वमान में रहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, तो जीवन में महानताएं आती रहती हैं। विचार महान होंगे, कर्म महान होंगे, दृष्टिकोण महान हो जाएंगे, नेगेटिव चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर यदि हम इस स्वमान में रहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ। यदि हम इस स्वमान में रहते हैं, मैं विजयी रतन हूँ। तो माया पर विजय करने की शक्तियाँ इमर्ज रहती हैं। हर चीज पर हमारी विजय होगी। मान लो किसी की नींद पर विजय नहीं है, योग में नींद आती है, सवेरे नींद आती है, अगर वो ये संकल्प करें मैं विजयी रतन हूँ, नींद पर भी मेरी विजय है, ये संकल्प जरूरी है, तो नींद पर विजय होने लगेगी। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध पर मेरी विजय निश्चित है, क्रोध पर विजय होने लगेगी। स्वमान जिस तरह का है, उसी तरह का हमारा स्वरूप बनने लगता है। मैं इस देवी हूँ, इस देव हूँ, तो वो पूजनीय स्वरूप, वो दाता का स्वरूप, वो सुभावनाएं देना, दुआएं देना, पवित्रता, ये सब बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबसे बड़ा स्वमान हमारा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, भय समाप्त होने लगता है। और ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि विनाश काल आत्माओं को बहुत भयभीत करेगा। विनाश माना ही भय। अभी आप कश्मीर की समाचार देखो, छत्तीसगढ़ का देखो, अभी तो 4 दिन का है मेजर साहब, हम तो यहाँ केवल सुनते हैं ना, वहां क्या हाल होगा, जहाँ पुलिस खड़ी रहती है, मिलिट्री खड़ी है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, खाने की चीजें नहीं ला सकते, कर्फ्यू लगे हुए हैं, बिजली कट गई, गर्मी पड़ रही है, घूम नहीं सकते, कितना कष्ट हो जाता है लोगों को, भय, गोलियां चल रही हैं, हमारे किसी को न लग जाए। भय के वातावरण में मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास अभी से होगा तो हम निर्भय हो जाएंगे। बहुत जरूरत पड़ेगी हमें विनाश काल में स्मृति स्वरूप होकर रहने की। बार बार हमें अपने को याद दिलाना पड़ेगा, खेल पूरा हो रहा है, सबको जाना है, सब कुछ छोड़कर, बच्चे छोड़कर, संपत्ति छोड़कर, घर छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, जो यहाँ का था वो यहीं छोड़कर चल देना है। बहुत स्मृति स्वरूप होना पड़ेगा, अन्यथा फील होगा हमारा सब कुछ चला गया, बाबा ने मदद नहीं की, बाबा से भी नाराजगी रहेगी, बाबा में संशय आएगा, संशय का परीक्षा होगी उस समय, निश्चय की परीक्षा। इसलिए बहुत आवश्यक है हम स्मृति स्वरूप हो जाएं। इसीलिए आप में से कईयों को मालूम होगा संन्यास में नियम बना दिया था, 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रहना, जब वहां से जाना है तो वहां का कुछ भी लेकर नहीं जाना, लाठी भी नहीं, वहां जो बिछाया था वो भी नहीं। ये स्थिति हमारी होगी अंतिम, कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सब कुछ हमने कमाया, जीवन भर हमने बहुत मेहनत करके कमाया है, बच्चों की पालना की है, उनको बड़ा किया है, मन मकान बनाया, वो सब छोड़ के चलना है स्मृति स्वरूप, कि ये अपना कर्तव्य था, इतने समय के लिए इसका हमें सुख लेना था, अब हम चले अपने धाम। तो न बच्चों में मोह रहेगा, न संपत्ति में मोह रहेगा, न व्यापार में मोह रहेगा, साक्षी भाव बहुत बढ़ाना होगा। ये है ड्रामा की बिंदी। धारणा का जो गुह्य ज्ञान हमें बाबा ने दिया है उसका प्रयोग हम अभी से करके मन के संकल्पों को बिंदी लगाया करें। मुरली चली है ना कल, शायद याद है ना, ड्रामा में हमें ये कहना ही नहीं है ये न होता तो ये हो जाता, हम वहां न जाते तो ये न होता। तो दो बहुत अच्छे संकल्प पक्के कर दे जीवन में। यह हरेक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए मैं सुनाए हैं कई बार, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं। जो हमारे चित्त की भावनाएं निगेटिव होती रहती है ना, बदले की भावना रहती है, इसने ये किया ठीक करेंगे, इसे गुस्सा रहता है मन में, अपने को अच्छी तरह ट्रेनिंग देकर समझा दें, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक दिन सोचने से काम नहीं हो जाएगा, बार बार सालों साल हमें इन संकल्पों को अपने अंदर समाना पड़े। दूसरा बहुत सुंदर संकल्प, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, इसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने को। देखो बाबा ऊपर बैठकर खेल को साक्षी होकर देखता है, उसे कोई संकल्प नहीं होता, न किसी के बारे में क्वेश्चन है न किसी के बारे में कंप्लेंट है। मैंने बच्चों की इतनी पालना की फिर भी ये भाग गए, है कंप्लेंट है? बाबा के मन में कुछ नहीं। हम सोचा करते हैं कभी कभी, हमने देखा बाबा को ओम शांति भवन में सर सर रात बैठते थे विदेशियों के लिए 12 घंटे, 13, 14, 15, 16 इतने इतने घंटे। कई लोग तो ये भी कह देते थे गुस्से में, बाबा इन विदेशियों के लिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, कह देते हैं ना भाई खुद को तो नींद आती है, लगता है बोर हो रहे हैं ये तो। लेकिन देखो इतनी बड़ी पालनाएं बाबा ने की और उनमें से बहुत आत्माएं बाबा को छोड़ के चलती बनी। बाबा को कभी ये ख्याल ही नहीं हुआ, किसी की कोई शिकायत नहीं कि मैंने इनके लिए इतना किया और देखो ये छोड़ के चल दिए मुझे। मैं समझता हूं जो तब विदेशी थे उनमें से 10% बचे होंगे, बाकी सब अपने घर चले गए। विदेशियों का तो ऐसा ही होता है ना। ऑस्ट्रेलिया में 3 चीजें बहुत प्रसिद्ध थी, वो भाई मुझे बताते थे, 3W वहां प्रसिद्ध है, क्या? वर्क, वाइफ और एक और क्या था भाई, वेदर। तीनों पे कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकते हैं, तैयार रहते हैं। जिससे शादी हुई वो कभी भी छोड़ के चल देगी, पत्नी को है ये कभी भी छोड़ के चल देगा, हमें कोई भरोसा नहीं। वर्क, वेदर और वाइफ, तीनों पर कोई विश्वास नहीं। अभी आप देख लो, माताएं सब अच्छी तरह जानती हैं, अगर पति पत्नी के बीच विश्वास न हो तो जीवन कैसा रहता है। जहां पत्नी पति पति पत्नी पर विश्वास नहीं उनका जीवन कैसा होगा। इसलिए साइकोलॉजिकली ये वेस्टर्न कल्चर वाले लोग काफी नीचे उतर चुके, उदास, खुशी ढूंढनी पड़ती है उन्हें, इसलिए लाफिंग क्लब बना दिए, हंसाते हैं जोर जोर से, बनावटी हंसी, अंदर से हंसी आ नहीं रही, हंसा रहे हैं। और हमारा देश भारत इसलिए सबसे महान है, यहाँ एक दूसरे में विश्वास, यहाँ विश्वास की कल्चर है ना, हमारी कल्चर में विश्वास है, हमारी कल्चर में अपनापन है, एक दूसरे को देने की सहयोग की भावना है। देखो हमारी कल्चर कितनी सुंदर थी, माताएं जानती होंगी, जब तक किसी सन्यासी को, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को भोजन न खिला दें रोज, भोजन नहीं करते थे। ये हमारी महान कल्चर थी। अभी 100 साल पहले तक, 100 साल में सब कुछ बिगड़ गया, अंग्रेज लोग आए थे सब बिगाड़ दिया भारत की कल्चर को। तो हम सभी ड्रामा के इस ज्ञान से अपने विचारों को शांत करें, तीनों बातों से, विचारों को, संकल्पों को शांत करना, इससे होंगे हमारे खजाने जमा। सबने ये अच्छी तरह सुना है, खजानों को खर्च करें तो खजाने बढ़ते जाएंगे। खुशी का खजाना देंगे तो डबल होकर खुशी हमारे पास आती रहेगी। दूसरों को मदद करेंगे, पुण्य करेंगे, हमारे पुण्य का खाता बढ़ता चलेगा। समय को सफल करेंगे, समय हमारे बहुत काम आएगा। दुआएं देते चलेंगे तो दुआएं मिलती चलेंगी। दुआएं बहुत अच्छी चीज हैं। हम सब ये अभ्यास किया करें। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाइब्रेशंस देना, एक दिन आप करके देख लें, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सब निरोग हो जाएं, सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए, सबका आपस में बहुत स्नेह हो जाए। ये सोचने से ही आत्मा आनंदित हो जाती है, होती है या नहीं? और जरा भी दुर्भावना किसी के लिए आ जाए, क्या होता है? हमारे मन में जरा किसी के लिए उल्टी भावना आ जाए, उसका इफेक्ट तुरंत हमें दिखाई देता है कि भाई जो शांति थी, जो हमारी खुशी थी, जो बहुत सुंदर आनंद था, वही समाप्त हो गया। तो हम बहुत प्यार से बाबा के इस प्रोजेक्ट को, अपनेपन से इसे आगे बढ़ाएंगे और पुण्य और यज्ञ सेवा के द्वारा अपने खाते को जमा करेंगे। यज्ञ सेवा की मुरली चली है ना, अभी 4-5 दिन पहले, याद है? मुझे याद आ रहा था बाबा की एक ऐसी यज्ञ सेवा की मुरली थी, तुम यदि सच्चे दिल से यज्ञ सेवा करो तो यह यज्ञ सेवा तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेगी। इससे हमारा सेवा भाव भी बढ़ता है, हमारे अंदर यज्ञ के लिए प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, हम भगवान के कार्य में सहयोग देते हैं, यानी हम भगवान के काम आते हैं। कितना बड़ा पुण्य है। किसके पास धन है, हम देखते हैं, मैं साक्षी होके देखता हूँ, धनवान हमसे मिलने आते हैं वो भी देते हैं एक लिफाफा, गरीब आते हैं वो भी देते हैं। अनेक बार मैंने देखा गरीब लोग ज्यादा देते हैं, हमें किसी का पैसा चाहिए नहीं, पर हम देखते हैं कि सच्चा प्यार बाबा के यज्ञ के प्रति, अच्छी भावनाएं, इसके लिए भी बहुत शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। हम यज्ञ सेवा में अपना धन लगा देते हैं तो क्या फायदा होगा जन्म जन्म? हमें धन की कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं कितनों के अनुभव जानता हूँ, बाबा व्यक्त हुए थे, जूनागढ़ में हमारा सेंटर खुला था, एक भाई कोर्स किया, वो गरीब था, थी तो उनकी 3 दुकानें पर चलती नहीं थी अच्छी, वो उसका कोर्स चल ही रहा था, वो आया श्याम को, देखा वहाँ भाई लोग कुछ बहने मीटिंग कर रहे हैं कि भाई प्रदर्शनी करनी है, कौन कितना मदद करेगा। अब इसको पता नहीं था कुछ भी, ये मदद क्या होती है। इसने सुना सबसे कोई कह रहा था मैं इतना दूंगा, 10, तब तो 10 रुपए का बड़ा महत्व था ना, मैं 20 रुपए दूंगा, 100 कोई दे दे तो समझते थे बहुत बड़ा आदमी है ये, तो कोई कहता था 5 रुपए, उसको बड़ी उमंग आई, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने थे वो बहन जी को दिए, मेरी ओर से बाबा की सेवा में लगा दो, गिने भी नहीं। और वहां से भगवान उस पर राजी हुआ और बढ़ोतरी ऐसे हुई। तब उसके छोटे बच्चे ही थे, 5 बच्चे थे, वो सब ज्ञान में है अब तक भी। वो अपना अनुभव सुनाया करते थे, तब तो अनुभव सुनाते थे ना क्लास में, मधुबन में छोटा सा क्लास होता था, रात्रि क्लास में 2-4 लोगों का अनुभव होता ही था। उसने ये अनुभव सुनाया कि बस बाबा के कार्य में लगाना, मुझे पता भी नहीं कितना था वो, 50 था 60 था 100 था, जो दुकान से लाया था वो जेब में था, लगाने से ऐसा लगा भगवान सचमुच राजी हो गया उसी दिन से, और अगले दिन से दुकानें तेज चलने लगी, और इतनी तेज चली कि इनको बाबा की लगन बहुत थी कि 2 दुकानें इन्होंने निकाल दी एक ही रखी और पूरी पूरा परिवार एक से ही बहुत आगे बढ़ गया। छोटी सी दुकान, मैं भी गया, मुझे भी दिखाई, छोटी सी दुकान इतनी चली, बच्चों की पालना की, उन्हें अच्छी तरह एजुकेट किया, पढ़ाया, अब वो अच्छे अच्छे नौकरियों में है। तो बाबा के यज्ञ की सेवा करने का ये मौका भाग्यवान आत्माओं को ही मिलता है। मैं तो माताओं के भावनाओं की और गुणों की सराहना करता हूँ। अपना अपना घर छोड़ के एक एक मास सेवा में आ जाते हैं। हम जानते हैं घर छोड़ना सहज काम नहीं होता, अनेक काम घरों में होते हैं। कहेंगे ये काम वो काम, अब ये चल रहा वो चल रहा, निकल ही नहीं सकते घरों से, दो घंटे के लिए भी नहीं निकलते, लेकिन माताएं यज्ञ सेवा में आती हैं। ये बाबा के प्यार की निशानी है आप सबके, और इसका रिटर्न बाबा बहुत देता है। सच्चे दिल से जो सेवाएं करते हैं उससे जमा का खाता बहुत होता है। मुझे याद है कभी ऐसी घटनाएं भी हुई, एक पैसे वाला भी आता था। अब मेला लग रहा था कहीं, तो वो जो मैदान था वो प्लेन करना था, जरा उबड़ खाबड़ था, तो सभी भाई लोग लगे हुए थे, 15-20 भाई, वो भी आया देखने। उसने कहा अरे भाई, उसको भी लोगों ने कहा तुम भी करो सेवा। वो कहता अरे क्यों, ये मिट्टी का काम तुम कर रहे हो, मेरे पास मजदूर बहुत हैं फैक्ट्री में, 20 भेज देता हूँ, वो सब काम कर जाएंगे, तुम छोड़ो। भाइयों ने कहा, क्या कहा होगा, कि ये काम मजदूरों से नहीं होता, ये हम स्वयं करते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारा प्रभु प्रेम, हमारे अंदर जो उमंग रहती है वो वहां वाइब्रेशंस क्रिएट करता है ना, वाइब्रेशंस का निर्माण करता है। उसके बाद जो वहां मेला लगेगा, जो सेवा होगी, उस पे उस मिट्टी का भी असर आएगा। मजदूरों से काम तो कोई भी करा सकता है, उसमें वाइब्रेशंस तो नहीं भरेंगे ना। तो उस व्यक्ति को आश्चर्य लगा। हमारे पास अब भी ज्ञान में कुछ लोग बड़े बड़े भाई हैं, आप जानते हैं फुलिया यहाँ के, जानते होंगे, अब वो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, IAS किया था उन्होंने, कुमार हैं वो, मुझे याद है मधुबन में कुमारों की भट्टी हुई, वो आए थे, बैंक में नौकरी थी उनकी, वहीं उन्होंने सुनाया, मुझे भी सुनाया, मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया है, SDM बने शुरू में, डिप्टी कलेक्टर, रोज सेंटर में आके सफाई करते थे, पंखे साफ करते थे, लोग उन्हें कहते थे साहब आपके पास तो नौकर भी होते हैं, पुलिस वाले हैं, कोई भी कर लेगा, ये नहीं उससे मेरा भाग्य थोड़ा ही बनेगा। फिर कलेक्टर बने, फिर कमिश्नर बने, अब तो प्रमुख सचिव फाइनेंस, पूरे हरियाणा के फाइनेंस कमिश्नर हैं वो, प्रमुख सचिव हैं। तो देखो बाबा की सेवाएं करते करते सारी सैलरी भी बहनों को दे देते थे, के लो, बहने वापिस देती थी कि इतना तुम रखो अपने खर्च के लिए। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने भी कितनी सेवा की शुरू से ही, अब ये बुजुर्ग हो गए तो लोग इनकी सेवाओं को नहीं जानते ना, कहते ये क्या डॉक्टर बूढ़ा हो गया, ऐसे बोल रहे थे ना, परंतु सेवाएं जिसने भी की हैं वो बहुत सुखी हैं। बाबा की नजर उनके ऊपर है, बाबा किसी की सेवाओं को भूलता नहीं, ये तो मनुष्य भूलता है ना, उसको सब ख्यालों में है। जब भी ऐसी आत्माओं पे कोई कष्ट आते हैं तो बाबा अलर्ट हो जाता है ऊपर, ध्यान रखना चाहिए हमें, सकाश दे देता, हाथ ऐसे करेगा और सकाश हाथ से निकल कर उस आत्मा के पास पहुंच जाती है, तुरंत मदद हो जाती है। तो ये यज्ञ सेवा हमारे पुण्य के खाते को बहुत जमा करती है, बहुत जमा होता है इससे। इसलिए निष्काम भाव से सेवा करना, निष्काम भाव से पुण्य कर्म करना, ये खाता जमा करने का और सुंदर तरीका है। सेवा का फील्ड भी ऐसा होता है जिसमें मनुष्य को ये संकल्प आता है मुझे पूछा जाए, मेरा भी सम्मान हो, मेरा भी नाम हो, जहाँ ये भावनाएं हैं वहाँ पुण्य का खाता कम होने लगता है। याद दिला दूं आपको, बाबा ने कह दिया है, कितनी स्पष्ट वाणी है, यदि निमित्त निर्माण निर्मल तीन धारणाएं ना हो तो चाहे कोई रात दिन सेवा करे उसका केवल 5% ही जमा होता है। इसलिए सेवा की और भूल गए, भूल गए माना मैंने कुछ किया है ये भी याद न रहे। दादी जान की भी यही सुनाया करती थी, सेवा की और समर्पित कर दिया, कुछ लेने की इच्छा नहीं, देने के बाद कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। अगर देने के बाद लेने की कामना रही तो देने का महत्व फीका पड़ जाता है, उस सेवा का बल निर्बलता में बदल जाता है। इसलिए सेवा कईयों को बल नहीं अनुभव हो रही है क्योंकि उसके पीछे कोई न कोई कामना अवश्य रहती है। तो हम अपने पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाएं। मैं तो ऐसे कहता हूं कि पुण्य कर्म ही हमारे सच्चे मित्र हैं, समय पर यही काम आएंगे। देखो बाबा की मुरली में अभी आ चुका है, साहूकार लोगों को बहुत कष्ट होगा, बहुत पैसा देकर भी पानी का गिलास नहीं मिलेगा। और भी था, बाबा कहा करते थे एक एक थैला भर के लाएंगे नोटों का कि लो पानी दे दो, तो भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जिनके पास पुण्यों का खजाना जमा होगा, पानी स्वतः ही चलकर उनके पास आ जाएगा, प्रकृति उनको सहयोग प्रदान करेगी, विनाश काल में उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए अंतिम समय विनाश काल में पैसा काम नहीं आएगा, काम आएंगे पुण्य कर्म और हमारी श्रेष्ठ स्थिति। बाबा को हमने कितना अपने प्यार और अधिकार में बांधा है, प्यार और अधिकार दो रस्सियां दी है ना बाबा ने हमें, मुरली में है या व्यक्त में, बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध कर रखो। प्यार और अधिकार, भक्तों के पास केवल प्यार रहा था, वो भी किसी किसी के पास, अब तो वो भी नहीं है। हमारे पास है प्यार और अधिकार। क्यों अधिकार है, क्यों अधिकार है बच्चे, नहीं और अच्छे शब्द बोलो, बच्चे तो सारी दुनिया है, और अच्छे शब्द बोलो, वो हमारा है, अपनों पर अधिकार होता है ना, ये अपनेपन की फीलिंग हम उसके प्रति बढ़ाते चले बहुत जरूरी है। रोहित भाई भी जा रहे हैं, पक्का करना जहां भी जाओ बाबा हमारा है, मेरा बाबा आ गया गीत तो है ही, पर वो हमारा है। संसार में कोई कह सकता है भगवान हमारा है, किसी को कहना भी नहीं आता, हाथ ही जोड़ते हैं प्रभु दया करो, वो हमारा है। अधिकार कितनी बड़ी चीज है, हमारा तो अधिकार भी और अपनापन भी, प्यार भी अधिकार भी और इस प्यार में बहुत अपनापन भी, इससे बहुत कुछ ठीक होता रहेगा। अधिकार से हम बाबा को बांध सकेंगे, हम कह देते हैं ये करो बाबा, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना माताओं के आगे, ये करो मुझे चाहिए, माताओं को क्या करना होता है, वो मानेंगे नहीं जब तक आप पूरी न करेंगे इच्छा। हम भी ऐसे ही बच्चे हैं बाबा के, हमें जिद तो नहीं करनी पर वो मेरा है। इस गुड फीलिंग को सभी बढ़ाते चलें। मुझे एक लास्ट में बात याद आई बाबा की, आज ही मैं एक मुरली पढ़ रहा था, इसी सीजन की है, जिसमें बहुत सुंदर महावाक्य है कि आगे चलकर सेवा होगी स्थिति से, आगे चलकर सेवा ऐसे चेहरों से होगी जिनके चेहरों पे सब खजानों की प्राप्तियों के चिन्ह होंगे। सब कुछ मिल गया, जो आत्मा सर्व खजानों से भरपूर होंगी वही संसार को कुछ दे पाएंगी। मैं बहुत पहले से ये बात सोचता था, देखकर बहुत कुछ समझ में आता था कि असली सेवा श्रेष्ठ स्थिति से होती है। असली सेवा हमारे चेहरों से, हमारे वाइब्रेशन से होती है। भाषण तो कोई भी कर दे, हमारे पास स्पीकर्स की कोई कमी नहीं। जितने स्पीकर बाबा के यज्ञ में हैं, उतने संसार में किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों के पास 2-4 स्पीकर होते हैं, हमारे पास हजारों हैं। किसी बहन को खड़ा कर दे, 1 घंटा भाषण करके आएगी और लोग कहेंगे वाह देवी के पास कितना ज्ञान है। एक जगह हुआ, पीछे बहन ने, मेरे साथी थी, तो 1.25 घंटा उसने कहा योग की कम्युनिटी से योग कराना था। मेरे से पूछा कितना टाइम बोल दूं, मैंने कहा खुले दिल से बोलो, कोई झंझट तो है नहीं, सब बैठे हैं, मुझे ही बोलना था, मैं अकेला स्पीकर। मैंने कहा अब तुम्हारा ही टर्न है, मजे से बोलो। उसने 15 मिनट तो आत्मा का ज्ञान दिया, 15 मिनट परमात्मा का, और फिर योग की विधि बताकर सबको योग में बैठा दिया, वाइब्रेशंस अच्छे हो गए। पीछे बाहर निकले तो मैं थोड़ा पीछे था, देखा एक व्यक्ति उस बहन से बात कर रहा है। वो क्या कह रहा था, मैं आ गया। वो था वहां का प्रसिद्ध कथावाचक, भागवत कथा करता था। अब वो क्या कह रहा, कह रहे बहन जी आपने 1.25 घंटे में 4 वेदों का सार बता दिया। अब हमारी भी समझ में आया, हमें अपनी महिमा का पता नहीं चलता ना, उसे तो था कि मैंने क्या भाषण किया, आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का छोटी सी बात बताई। और सुनने वाला जो कथावाचक बैठा, जिसका नाम है उस स्थिति में, वो कह रहा है बहन जी आपने इतने थोड़े समय में 4 वेदों का सार बता दिया, आप कितने महान हैं, कितना ज्ञान है आपके पास। तो उसको नशा चढ़ा बहन जी को कि मैंने छोटी बात नहीं बताई, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। तो हम सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान को पहचानते चलें। जिस ऊंची नजर से बाबा हमें देखता है, उसी ऊंची नजर से हम भी अपने को देखें। हंसी की लास्ट बात बता देता हूं, मैंने अपने को कैसे ट्रेनिंग दी थी। छोटे हॉल में बाबा आते थे मधुबन में, हम बिल्कुल पास पास बैठते थे, बिल्कुल आप भी दूर बैठे, पहली लाइन वाले बिल्कुल पास। तो मैं कभी कभी सोचा करता था, मुरलियां चलती थी जब, तो बाबा कहता था तुम महान आत्माएं हो, चुनी हुई आत्माएं हो, विशेष आत्माएं हो। मैं सोचा करता था भगवान भी कभी बैठ के सोचता तो होगा कि मैं इनको कितना समझाता हूं तुम महान हो, पता नहीं इनकी समझ में कब आएगा। ये क्यों नहीं समझते कि हम सचमुच बहुत महान हैं। तो बार बार हमें कहता है ना, बार बार। 2 साल पहले बाबा के बहुत अच्छे शब्द, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की सबसे महान आत्माएं हो, तुम साधारण नहीं हो, पूर्वज हो, अपने को पहचानो। चलो अब इसी फीलिंग से हम विश्व को सकाश देंगे। ग्लोब पर बैठे सभी बिल्कुल संकल्प करें, मैं पूर्वज फरिश्ता ग्लोब के ऊपर विश्व के गोले पर विराजमान, बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मेरे अंग अंग से, आंखों से, मस्तक से किरणें ही किरणें फैल रही हैं, जैसे हम शक्ति में हो गए हैं।